ಯಶೋದನಂದನ ವ್ರಜಜನರಂಜನ ಯಶೋದನಂದನ ವ್ರಜಜನರಂಜನ ಯಮುನಾಧೀರ ಅನುಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರ ಅನುಚಾರಿ ಜಯೋ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯೋ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವಾಜಿಕಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋದಶ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಹಿಸ್ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಏ ಸಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜಯ ಅನಂತಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವೃಂದ ಕೀ ಜಯ ನಮಾಚಾರ್ಯ ಶೀಲ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಕೀ ಜಯ ಪ್ರೇಮ್ ಥ ಕಹೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧಾರ್ ಶಿವ ಸದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಕೀ ಜಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಗೋ ಗೋಪಿನಾಥ ಶ್ಯಾಮ ಕುಂಡ ರಾಧಾಕುಂಡ ಗಿರಿ ಗೋವರ್ಧನ್ ಕೀ ಜಯ ವೃಂದಾವನ್ ಧಾಮ ಕೀ ಜಯ ನವದೀಪ್ ಮಾಯಾಪುರ ಧಾಮ ಕೀ ಜಯ ಗಂಗಾ ಮಾಯಿ ಕೀ ಜಯ ಯಮುನಾ ಮಾಯಿ ಕೀ ಜಯ ಭಕ್ತಿ ದೇವಿ ಕೀ ಜಯ ತುಳಸಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಕೀ ಜಯ ಸಂವೇದ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಕೀ ಜಯ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ ದಾಸ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಭಾವ ದಿವಸ ಮಹಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕೀ ಜಯ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ ಭಟ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಭಾವ ದಿವಸ ಮಹಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕೀ ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕವಿರಾಜ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕೀ ಜಯ ನಿತಾಯಿ ಗೌರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಮ ಜ್ಞಾನದಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಾ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೇ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಾ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರೌ ಶ್ರೀಯುತಾಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಂ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಗಣಾ ರಘುನಾಥಾಂವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಾ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಗಣಾ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾಂವಿತಾಂಶ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮಸ್ತುತೆ ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗೀ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವಿಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ ವಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪರಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವ ಸದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ತೊ ಏಕ ಬಾರ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ ದೇ ರಹಾ ಥಾ ತೊ ಲೋಗ್ ಐಸಾ ಬಹುತ್ ದೂರ ಬೈಠೆ ಹುಯೇ ಥೆ ತೊ ಮೈ ಮೇರಾ ಕುರ್ಸಿ ಉಠಾ ಕೇ ಉನ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಚಲಾ ಗಯಾ ತೊ ಥೋಡಾ ಲೋಗೋ ಕೋ मैं थोड़ा सोच रहा हूँ मैं इस तरफ घूम जाता हूँ, सब लोग इस तरफ बैठे हुए हैं, थोड़ा सिर कौन दे रहे हैं। सर का तो ऐसा बस 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 और थोड़ा बस नहीं बस ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज अति शुभ, वी नीड सम ट्रांसलेटर फॉर प्रभु द्विजमणि गौर प्रभु। यस यस प्रभु, यू हैव टू डू सेवा फॉर डूइंग द ट्रांसलेशन। ओके हरे कृष्णा। तो आज अत्यंत ही शुभ दिवस है और हम आज तीन गोस्वामियों का तिरुभाव दिवस है, एक साथ तीन गोस्वामी। तो आज एक हम श्लोक उच्चारण करेंगे, श्लोक को कंठस्थ भी करेंगे। ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कहा गया है और ये उन्होंने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को आज्ञा दी। ये चैतन्य महाप्रभु के श्रीमुख से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को आज्ञा दी है, उन्होंने इसका उच्चारण करेंगे। भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम, अचिरे करिबेन कृपा कृष्ण भगवान। भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम, अचिरे करिबेन कृपा कृष्ण भगवान। एक बार और उच्चारण करेंगे फिर हम बोर्ड को हटा देंगे, आपको कंठस्थ करके उच्चारण करना पड़ेगा। ठीक है, बोर्ड को कौन हटाएगा पहले उसका? हाँ आप, इसके बाद एक उच्चारण और के बाद। भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम, अचिरे करिबेन कृपा कृष्ण भगवान। अच्छा मैं अर्थ बताता हूँ फिर एक बार और उच्चारण करेंगे फिर हटाएंगे बोर्ड को। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं भागवत पढ़ सदा, आप सदा भागवत पढ़िए, मतलब प्रतिदिन भागवत पढ़िए, प्रतिदिन आप भागवत का अध्ययन कीजिए और कृष्ण भगवान का नाम लीजिए। प्रतिदिन माला जप करते हैं, माला पे जितना माला जप करते उतना माला जप कीजिए और उसके अलावा भी जब भी हमको समय मिले भगवान का नाम लीजिए, कीर्तन कीजिए। तो दो चीज़ करने को कह रहे हैं, भागवत पढ़िए और कृष्ण भगवान का नाम लीजिए। अचिरे, अचिरे का अर्थ है कि बहुत शीघ्र, जल्दी ही। अचिरे करिबेन कृपा कृष्ण भगवान, शीघ्र ही भगवान कृष्ण आप पे कृपा करेंगे यदि आप ये दो कार्य करेंगे, ऐसा चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, अभी एक बार मैं उच्चारण करता हूँ उसके बाद हम बोर्ड को हटाएंगे, आपको अपने आप जिसने जिसका कंठस्थ कर लिया है वो उच्चारण करेंगे। भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम, अचिरे करिबेन कृपा कृष्ण भगवान। अभी हटा दीजिए बोल। अच्छा, अभी जिनको कंठस्थ हो गया है वो अपना हाथ खड़ा करेंगे और उनको मैं बुलाऊंगा, बोलूंगा हाँ भाई आप उच्चारण कीजिए तो उच्चारण कीजिएगा। किनको कंठस्थ हो गया है? शिवानंद श्याम प्रभु। अच्छा हाँ, उधर माता जी से शुरू करेंगे, लेडीज फर्स्ट। माता जी उच्चारण कीजिए, कोई छोटा माइक पास करें, कर दो एक बार, एक मिनट रुक जाइए। हाँ मीडियम रखो, पास कर देंगे। अरे गुरुकुल के बच्चों का भी नहीं हुआ है? ठीक है अभी करेंगे, तो वहां से स्टार्ट करेंगे पीछे से।
भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम,
भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम,
अचिरे करिबेन कृपा कृष्ण भगवान,
अचिरे करिबेन कृपा कृष्ण भगवान। हरि बोल बोलेंगे सब लोग, हरे कृष्णा। हाँ माता जी आपके पीछे, उनको भी उच्चारण करना है। हाँ कीजिए, ऑन ही रखिए, माइक को बटन ऑन ही रखिएगा।
भागवत पढ़ो सदा लहो कृष्ण नाम,
भागवत पढ़ो सदा लहो कृष्ण नाम।
अचिरे अचिरे करिबे न कृपा कृष्ण भगवान,
अचिरे करिबे न कृपा कृष्ण भगवान। हरि बोल, हरे कृष्ण। अच्छा, अभी गुरुकुल के छात्रों में से जिसको कंठस्थ हो गया है कौन करेंगे उच्चारण? चलो पीछे, हाँ इधर हुआ, कुछ लोग को हो गया है तो कीजिए, बोले माता जी करेंगे।
भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम,
भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम।
अचिर करिबेन कृपा कृष्ण भगवान,
अचिरे करिबेन कृपा कृष्ण भगवान। हरि बोल। अच्छा, अभी गुरुकुल के छात्र उच्चारण करेंगे, हाथ खड़ा कीजिए जिसको कंठस्थ हो गया, हाँ दीजिए उनको, कीजिए उच्चारण कीजिए।
भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम,
भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम।
अचिरे करिबे न कृपा कृष्ण भगवान,
अचिरे करिबे न कृपा कृष्ण भगवान। हरि बोल, बोलो भाई। अच्छा अब और इस साइड से, अरे और किसी को याद नहीं हुआ गुरुकुल में से? किसी को याद हुआ ना, फिर क्यों शर्मा रहे थोड़ा? ठीक है, इधर से इधर से इधर उच्चारण करने को दीजिए, फिर गुरुकुल के पास आ जाएंगे दोबारा। कौन कर रहा है? हाँ कीजिए कीजिए कीजिए।
भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम,
भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम।
अचिरे करिबे न कृपा कृष्ण भगवान,
अचिरे करिबे न कृपा कृष्ण भगवान। हरि बोल। बहुत सुंदर उच्चारण किया उन्होंने, तो ऐसे शर्मा रहे थे, संकोच कर रहे थे कि शायद याद है कि नहीं है। दोबारा से बोलिए बोलिए, अभी बोलिए 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 बोलिए। हाँ सोच लीजिए दोबारा एक बार स्थिर होके। भागवत 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 से शुरू हो रहे हैं। हाँ ठीक है, एक बार किसी और को उच्चारण करने दीजिए। चलो गुरुकुल में से और किसको कंठस्थ हो गया है? नहीं, चलो राजन शुरू आप कुल दीजिए एक बार।
भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम,
भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम।
अचिरे करिबे न कृपा कृष्ण भगवान,
अचिरे करिबे न कृपा कृष्ण भगवान। हरि बोल, हरे कृष्ण। चलिए अभी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इस श्लोक के ऊपर और आज के इस शुभ दिवस के ऊपर भी। तो आज जो है मैंने बताया, अच्छा मैंने बताया, अभी मैं आपसे पूछता हूँ, गुरुकुल में से बताइए आज का दिन जो है तीन गोस्वामियों का तिरुभाव दिवस है, किस किस का है बताइए? मैंने ऑलरेडी एक बार तो बता दिया है, हाथ खड़ा कीजिए किसको याद है। आज तीन गोस्वामियों का तिरुभाव दिवस है, तीनों गोस्वामियों का नाम कौन बताएगा? अभी मैंने शुरू में बताया है, उनके नाम के प्रेम ध्वनि में भी बोला है किसी को। हाँ दीजिए उनको माइक दीजिए। अभी अभी मेरे सवाल का जो जो उत्तर देगा उनको हम स्पेशल प्राइज भी देंगे हैं। अभी नोट करते रहेंगे इनका नाम। किसको नोट करने को बोलूँ? राजवंश प्रभु, जो जो अभी उत्तर दे रहे हैं उनका नाम कहीं पर नोट कीजिए, उनको हम क्लास के बाद विशेष प्राइज भी देंगे। हाँ अभी कौन उच्चारण कर रहे हैं? हाँ बताइए बताइए, कौन से तीन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है?
गोपाल भट्ट गोस्वामी।
रॉन्ग, फाउल हो गया। पास करो माइक्रोफोन, हाँ उनको दीजिए कीजिए। बताइए कौन से तीन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है आज?
रघुनाथ भट्ट।
हाँ बोलिए आगे।
कृष्णदास कविराज गोस्वामी।
हाँ बिल्कुल सही, रघुनाथ भट्ट, कृष्णदास कविराज गोस्वामी और एक और गोस्वामी है, अब बोलना नहीं है। अरे फाउल हो गया, करो माइक्रोफोन। किसको मालूम था तीनों? हाँ चलो बोलिए, तीनों का नाम बोलिए। दो माइक्रोफोन दो.
रघुनाथ भट्ट गोस्वामी.
हाँ.
रघुनाथ दास गोस्वामी.
हाँ.
कृष्ण.
हाँ. कौन कृष्ण?
कृष्ण कविराज.
कृष्णदास कविराज गोस्वामी. हरि बोल. चलो उनका इनका नाम नोट करो. इन्होंने बताया तीनों का उत्तर. इनका नाम नोट करो. तो आज इन तीन गोस्वामियों का तिरुभाव दिवस है. ना हम भूल जाते हैं कि कौन तीन गोस्वामी हैं. अभी मैंने बताया भी. तो अभी मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा इनके बारे. और आपने कितना ध्यानपूर्वक सुना है. क्लास के बाद एक छोटा सा क्विज भी लूँगा और फिर उसका प्राइज देंगे हम लोग. प्राइज क्या? वो आपको सरप्राइज. ठीक है. तो अभी ध्यानपूर्वक कथा सुनिए. तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो हैं वो तपन मिश्रा के पुत्र हैं. तपन मिश्रा पहले बांग्लादेश में रहते थे. बांग्लादेश जो है उसको पश्चिम बंगाल भी कहा जाता है. चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो पूर्व ये ईस्ट बंगाल मतलब पूर्व का जो बंगाल है वहाँ पे रहते थे. पश्चिम बंगाल तो इंडिया में, उसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं. चैतन्य महाप्रभु पश्चिम बंगाल में अवतरित हुए. लेकिन ये एक भक्त थे जो ईस्ट बंगाल मतलब पूर्व बंगाल में रहते थे. और वो शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे, खोज रहे थे कि जीवन का क्या लक्ष्य है और उसको कैसे प्राप्त किया जाए. साध्य और साधन तत्व कहते हैं. साधन मतलब उसको प्राप्त करने का विधि और साध्य मतलब जो प्राप्त करना है. तो उनको निर्धार नहीं कर पा रहे थे. तो चैतन्य महाप्रभु भक्ति प्रकाशित करने से पहले वो बांग्लादेश गए थे. और बांग्लादेश में इनके स्वप्न में एक बहुत जो है उज्जवल व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि कल निमाय पंडित आ रहे हैं, वो आपको उत्तर देंगे आपके सवाल का. जो आप सवाल का उत्तर ढूंढ रहे हैं, साध्य के जीवन का क्या लक्ष्य है और कैसे प्राप्त करना है, आपको उत्तर मिलेगा निमाय पंडित से, उनका शरण लीजिए. तो इन्होंने निमाय पंडित का शरण लिया और चैतन्य महाप्रभु ने उनको हरिनाम का उपदेश दिया. उपदेश देके उनको कहा कि आप क्या कीजिए, अभी वाराणसी में जाके रहिए. बांग्लादेश से वाराणसी भेज दिया. तो वाराणसी भेज के चैतन्य महाप्रभु स्वयं आ गए, अपना नवद्वीप आ गए और ये वाराणसी में वास करने लगे. तो वाराणसी में फिर चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन गए तो वो वाराणसी भी गए. और वाराणसी में उन्होंने वृंदावन जाते समय वाराणसी में रुकना नहीं चाहते थे, क्योंकि वाराणसी में कौन है, सब मायावादी गण है. वाराणसी उनकी नगरी है. और भगवान चैतन्य महाप्रभु रुकना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी तपन मिश्रा, चंद्रशेखर वैद्या, ये दो भक्त थे महाप्रभु के और उनका पुत्र रघुनाथ भट्ट, इन्होंने निवेदन किया कि आप कितने सालों के बाद आए हैं, फिर कभी आएंगे नहीं आएंगे, आप यहाँ कुछ रुक जाइए कुछ दिन के लिए. तो यद्यपि चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल भी वो वाराणसी में 10 सेकंड भी रुकना नहीं चाहते थे, वो 10 दिन के लिए रुक गए वाराणसी. सोचिए जाते जाते तो 10 दिन वाराणसी रुक गए और भक्तों की प्रसन्नता के लिए फिर चले गए वृंदावन. किसी से मिले नहीं, उनके घर भक्तों को प्रसन्न किया, 10 दिन चले गए. फिर जब वापसी में आए तो दोबारा वाराणसी में रुके तो वहाँ पे सनातन गोस्वामी उनसे आके मिले. वृंदावन से वापस आते हुए सनातन गोस्वामी जब मिले तो फिर महाप्रभु ने 2 महीने रुके वाराणसी में दोबारा और सनातन गोस्वामी को भक्ति की, भागवत की शिक्षा दी. भागवत का क्या तत्व है, भक्ति कैसे करनी चाहिए, भगवान कृष्ण के बारे सब बताया. कितना? 2 महीना सनातन गोस्वामी को बताया चैतन्य महाप्रभु ने. और उनके मुख से तपन मिश्रा ने भी सुना और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने भी सुना. केवल सुना ही नहीं, वैसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उस समय गुरुकुल के छात्र थे, जैसे आपके जैसे, तो स्कूल में पढ़ते थे, छात्र थे. उन्होंने क्या किया, जब चैतन्य महाप्रभु आए वाराणसी और वो जब भोजन ग्रहण किया करते थे तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भोजन के बाद जिस थाली में उन्होंने भोजन लिया उसको साफ करता था और जो जगह पे भोजन लिया उसको लेप करते था. और चैतन्य महाप्रभु जो विश्राम करते थे उनके पांव दबाता था रघुनाथ, छोटा बच्चा था। रघुनाथ बाल्य कैला प्रभु रासेवन उच्चिष्ट मार्जन आर पाद संवाहन। तो बाल्यकाल में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने महाप्रभु का सेवा किया, उच्चिष्ट मार्जन किया, उनका पाद संवाहन किया, पैर दबाए, और इसके चलते उनको इतनी कृपा प्राप्त हुई। देखिए सेवा में बहुत कृपा है, जब हम अच्छे भाव से सेवा करते हैं ना, हम सेवा करते हैं उत्साह से, सद्भावना से सेवा करते हैं, तो उसमें बहुत कृपा है। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी क्योंकि बाल्यकाल में सेवा की है महाप्रभु की, तो इतने बड़े गोस्वामी बने आगे चल के। तो फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब बड़े हो गए तो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी आए। चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आए जगन्नाथपुरी, और बताया गया है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की कुछ गुणों का वर्णन किया गया है। क्या गुण है उनका? रघुनाथ भट्ट पाके अति सुनिपुण, यही रांधे से ही है अमृते रसम। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट थे, जो भी पकाते थे अमृत के समान उसका टेस्ट होता था, कुकिंग में एक्सपर्ट थे। मतलब भक्तों का सेवा करते थे, महाप्रभु को अपने बुलाते थे, महाप्रभु को अन्य भक्तों को बुलाते थे और बहुत अच्छा फीस्ट बनाते थे और खिलाते थे, तो बहुत अच्छे कुक थे। प्रभुपाद ने कहा है सब भक्तों को कुकिंग आनी चाहिए और ड्राइविंग आनी चाहिए तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं ना, कुकिंग आती है और ड्राइविंग आती है तो आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, ये दो चीज, ये दो एक गुण जो है। तो इस तरह से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अच्छे कुक थे, और इस तरह से वो वहां पे रहे और महाप्रभु की सेवा की, उनका संग लिया, भक्तों का संग लिया। और कितना समय रहे जगन्नाथपुरी में? 8 महीना रहे जगन्नाथपुरी में। अष्टमास रही प्रभु भट्टे विदाई दिला, विवाना करी हा बलि निषेध करीला। 8 महीने के बाद जब रघुनाथ भट्ट जाने लगे तो महाप्रभु ने उनको कहा, क्या कहा? आप विवाह मत कीजिएगा। अरे विवाह करने में क्या कुछ बुराई है, कोई पूछेगा इसमें क्या, ऐसा क्यों बोल दिया महाप्रभु ने? तो महाप्रभु ने स्वयं 2 विवाह किए हैं। देखिए जिन्होंने स्वयं 2 विवाह किए हैं उनको बोल रहे हैं विवाह मत कीजिएगा तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि महाप्रभु जानते हैं, ऐसा नहीं कि विवाह करना कुछ बुरा काम है, इसलिए नहीं कह रहे। विवाह करके व्यक्ति भक्ति कर सकता है, प्रायः गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति भक्ति करता है, लेकिन उन्होंने देखा कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो है वो विवाह नहीं करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, वो अच्छे से सेवा कर पाएंगे और वृंदावन में जो सेवा महाप्रभु चाहते थे उनके लिए वो सेवा कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को निषेध कर दिया कि आप विवाह मत कीजिएगा। फिर उनको क्या कहा? आप दोबारा एक बार नीलाचल आइएगा, ठीक है? नहीं, उससे पहले और एक चीज कहा उन्होंने। उन्होंने कहा वृद्ध माता पिता याई कर हासेवन, आपके माता पिता वृद्ध हैं, आप जाके उनकी सेवा कीजिए। वैष्णव पाश भागवत कर अध्ययन, आप वैष्णव के पास जाके भागवत पढ़िए, माता पिता की सेवा कीजिए, और ये तो 2 काम करने को ले, 2 काम कीजिए, और एक काम बोला मत कीजिए, वो क्या था? विवाह मत कीजिए तो 2 काम कीजिए और 1 काम मत कीजिए, ऐसा महाप्रभु ने उनको विदाई देते समय ये आज्ञा दी। फिर उसके बाद बोला एक बार आप दोबारा आइएगा, दोबारा एक बार जगन्नाथपुरी आइएगा। कब आइएगा बताया नहीं, दोबारा जब भी संभव हो एक बार जगन्नाथपुरी दोबारा आइएगा मिलने मेरे से। और ये बोल करके उनको रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को महाप्रभु ने अपनी कंठ की माला उनके कंठ में डाल दी। पुनरपि एक बार आसीहा नीला चले, एत बलि कंठ माला दीला तार गले। कंठी माला महाप्रभु ने स्वयं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के गले में डाल दी, तो उनको अपना लिया। प्रभुपाद कहते थे हम भगवान के दास हैं, ये हम कंठी माला पहनते ना, इसका क्या अर्थ है? हम भगवान के दास हैं। जैसे कोई हम देखते हैं ना कुकुर, देखते हैं ना कुकुर, महाराष्ट्र में कुकुर को क्या बोलते हैं? हैं पपी तो इंग्लिश में बोलते हैं, कुतरा है, कुतरा यहाँ बहुत घूमते हैं कुतरे देखो अगर किसी कुत्ते के गले में पट्टा है तो हम समझ जाते हैं, अरे भाई ये इसका कोई तो स्वामी है ना, किसी का पालतू है, कोई तो मालिक है। तो और जिसके गले में पट्टा नहीं वो पालतू कुत्ता है है ना, ऐसे घूम रहा है इधर उधर। तो इसलिए जब यमदूत देखते हैं अरे, और फिर किसी का पालतू कुत्ता हो तो हम उसको मारते नहीं, थोड़ा दूर रहते हैं, भाई उसका मालिक आ जाएगा तो झगड़ा करेगा हमारे साथ। और जो इधर उधर का फालतू कुत्ता होता है उसको हड़का देते हैं, है ना, उसको यहाँ पे अभी नहीं करना है ऐसा, पर ऐसा कर देते हैं बारे बारे। तो ऐसे ही जब यमदूत देखते हैं अरे कंठी माला है, ये भगवान के हैं, इनके पर दूर रहना, इनसे यमदूत हैं और जो भी अन्य भूत पिशाच है वो सब भक्तों के पास नहीं आते। और देखते हैं गले में कंठी माला नहीं है तो फालतू समझते हैं, उसको हड़का सकते हैं वो लोग, ऐसा है। तो इसलिए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के कंठ में महाप्रभु ने स्वयं अपनी माला दे दी। आप सोचिए कितना बड़ा उनको पुरस्कार दिया महाप्रभु ने। अच्छा, फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वापिस आ गए और उन्होंने आकर के वैष्णव से भागवत पढ़ा, माता पिता की सेवा की और 4 साल तक किया, महाप्रभु की जो भी आज्ञा थी 4 साल तक पालन की। और 4 साल के बाद उनके माता पिता भगवान के धाम चले गए, वो भी वैष्णव थे, तपन मिश्रा और उनके अर्धांगिनी वैष्णव वैष्णवी थे, भगवान के धाम चले गए। उसके बाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी दोबारा नीलाचल आए 4 साल के बाद, फिर दोबारा नीलाचल आ गए। और जब दोबारा नीलाचल आए तो वहाँ पे दोबारा 8 महीना रहे। तो पहली बार आए 8 महीना रहे, फिर चले गए, सेवा की माता पिता की, भागवत पढ़ा, दोबारा आए दोबारा 8 महीना रहे। अभी दोबारा समय आ गया उनके जाने का, 8 महीने रहने के बाद महाप्रभु दोबारा उनको कुछ आदेश देते हैं। तो महाप्रभु क्या आदेश हुआ बताइए, कौन गैस करेगा क्या आदेश दिया महाप्रभु ने दूसरी बार, हाथ खड़ा कीजिए। वृंदावन भेजा, हाँ बिल्कुल सही बात है, वृंदावन भेजा, और कौन गैस करेगा क्या आदेश दिया महाप्रभु ने उनको, हाथ खड़ा कीजिए। हैं वृंदावन की पुनर्स्थापना, ठीक है वृंदावन जाए जा रहे हैं, वृंदावन की स्थापना करनी, और क्या आदेश दिया बताइए, भक्ति का प्रचार, ओके। और अरे ये जो हमने श्लोक उच्चारण किया मैंने शुरू में बताया महाप्रभु का आदेश है, अभी बोलिए भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम अचिरे करिबेन कृपा कृष्ण भगवान। ये जब दूसरी बार उनको विदाई दिया तो ये आदेश दिया, अभी जिसका उच्चारण किया सब भूल गए, बार बार पूछ रहा हूं बताइए बताइए। तो आप हमेशा भागवत पढ़िए और कृष्ण का नाम लीजिए, अचिरे करिबेन कृपा, आपके ऊपर कृष्ण भगवान की कृपा होगी। और उनको फिर क्या कहा, आप क्या कीजिए, हमारे आज्ञा रघुनाथ यह वृंदावन है, अभी आप वृंदावन जाइए क्योंकि आपके माता पिता भगवान के धाम चले गए हैं, अभी आप वृंदावन जाइए और वृंदावन में जाके रूप और सनातन के संग में रहिए। हमारे आज्ञा रघुनाथ यह वृंदावन है तहाँ यहाँ रह रूप सनातन सने, रूप सनातन के संग में आप वृंदावन में रहिए। एतबली प्रभु तारे आलिंगन कैला, और महाप्रभु ने इस बार उनको आलिंगन किया। प्रभु रा कृपा ते कृष्णा प्रेमे मत हैला, महाप्रभु की कृपा से प्रेम से विवल हो गए। महाप्रभु ने जिनको आलिंगन किया उनको कितना प्रेम दे दिया होगा महाप्रभु ने। तो देखिए महाप्रभु की जो भी आज्ञा का पालन करेगा उनको भी महाप्रभु का आलिंगन मिलेगा, ऐसा है कि महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को आलिंगन किया ना, तो महाप्रभु उनको जो भी आज्ञा दी उन्हें उसका पालन किया, तो महाप्रभु का आज्ञा का जो भी पालन करेगा उनको महाप्रभु का आलिंगन प्राप्त होगा। और जिनको महाप्रभु का आलिंगन प्राप्त होगा उनका जीवन में इतना अत्यंत जो है अगाध प्रेम और प्रेम का उल्लास और सुख भर जाएगा, उसकी हम कामना नहीं कर सकते। फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को विदाई के समय दोबारा कुछ गिफ्ट दिया महाप्रभु ने उनको, एक सुपारी दी, जगन्नाथ जी को जो भोग लगाई गई थी सुपारी वो दी, और जगन्नाथ जी का तुलसी माला दिया। अभी देखिए हम तुलसी माला देखे ना, हमने वृंदावन बिहारी का माला देखते हैं हम लोग माला, जगन्नाथ जी का तुलसी माला जो था वो कितना लंबा था, 21 फुट लंबा था। मैं यहाँ से, जैसे यहाँ से प्रभुपाद का ऑल्टर है ना, इतना लंबा तुलसी माला आप सोच लीजिए अंदाजे से 21 फुट लंबा तुलसी माला था जगन्नाथ जी का। और वो तुलसी माला, महा तुलसी माला दिया, पूरे वृंदावन में महा तुलसी बांट सकते हैं जितने भी वासी हैं, कम नहीं पड़ेगा। लेकिन उन्होंने सुखा करके उनको अपने पास रखा तुलसी माला को, और महाप्रसाद दिया भी होगा और रखा भी होगा। 21 फुट का तुलसी माला सोचिए कितना तुलसी, और मोटा जगन्नाथ जी का माला देखा इतना मोटा होता है, और 21 फुट लंबा तुलसी माला दिया उनको रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी आ गए, वृंदावन आ गए, और फिर बताया गया वृंदावन में आकर के उनका क्या सेवा वृंदावन में, रूप गोसाई रास भाई करें भागवत पठन। रूप गोस्वामी की जहां पे सभा लगती थी, कहां पे सेवा लगती थी रूप गोस्वामी की, राधा दामोदर मंदिर में। गोस्वामी मिलके जो है राधा दामोदर मंदिर में मिला करते थे, चर्चा किया करते थे भागवत पे, महाप्रभु के बारे चर्चा करते थे, कैसे महाप्रभु के इस प्रचार का, इस मिशन का प्रचार करना, इस पे चर्चा करते थे। तो रूप गोस्वामी जब जहाँ पे भी रूप गोस्वामी की सभा लगती थी, सभी गोस्वामी आते थे वहाँ पे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भागवत पढ़ा करते थे। पीकस्वर, हाँ ये बताया गया, रूप गोस्वामी सभाए करेन भागवत पठन, भागवत पढ़ी थे प्रेमे ओ लाए तार मन। जब वो भागवत पढ़ते थे तो उनका मन जो है प्रेम से विवल हो जाता था। मैं एक भक्त से मिला, वो मेरे को बोलने लगे प्रभु जी मैं थोड़ा आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बताया क्या, मैं जब भागवत पढ़ता हूँ मुझे बहुत नींद आती है, है ना। तो हम लोग प्रभुपाद का किताब खोल लेते हैं तो इतना वेग से नींद आ जाती है ना किताब खोलने पे, तो हमारा दशा बिल्कुल उल्टा ही है। तो देखिए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब भागवत पढ़ते थे प्रेम से उनका हृदय विवल हो जाता था, अश्रु बह जाते थे, गदगद कंप होता था। क्यों ऐसा, क्योंकि वो बताया गया है, आगे आगे बताएंगे क्यों उनका हृदय जो है भागवत पढ़ने से महाप्रभु के कृष्ण के प्रेम में जो है विवल हो जाता था। तो भागवत पढ़ते थे और किस तरह से भागवत पढ़ते थे भी बताया गया है। पीक स्वर कंठ ताते रागे रावि भाग, एक श्लोक पढ़ी थे फिर आए तीन चारी राग। तो पीक स्वर कंठा, पीक मतलब कुकू, कोयल होते ना, कोयल, कोयल कैसे हैं, कोयल भी तीन चार स्वर में गाती है, एक स्वर में नहीं गाती, अलग अलग समय, कभी लंबा गाती है कभी तो शॉर्ट गाती है, जो कोयल है तीन चार स्वर में गाती है। तो कोयल की तरह मधुर उनका आवाज था और तीन चार राग में, एक एक श्लोक को तीन चार राग में गाया करते थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। कृष्णेरा सौंदर्य मधुरिया यबे पढ़े सुने, प्रेमे ते भी वल तबे किछु ही ना जाने। जब भी वो कृष्ण का सौंदर्य मधुर्य पढ़ते थे सुनते थे प्रेम में इतने विवल हो जाते थे कि सब कुछ भूल जाते थे, वो कुछ याद नहीं रहता था। तो जैसे हम कोई क्लास सुनते हैं तो सोचते हैं टाइम की ओर देखते हैं अभी थोड़ा कब खत्म होगा, है ना, फिर प्रसाद में आरती होगा प्रसाद मिलेगा, तो है हमको ये चेतना रहती है कि कल क्लास लेट ना हो, सब टाइम से शुरू हो और प्रसाद मिले, और ठीक वाला प्रसाद मिले हैं, द्रोणा अच्छा वाला द्रोण प्रसाद मिलना चाहिए। लेकिन वो जब भागवत पढ़ते थे सब भूल जाते थे, दिन है कि रात ये भूल जाते थे, भूख प्यास भूल जाते थे जब भागवत पढ़ते थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। गोविंद चरण कैला आत्मसमर्पण, गोविंद चरण अरविंद यार प्राण धन। तो गोविंद देव के चरणों में आत्मसमर्पण किया, गोविंद देव के चरण उनके प्राण धन थे। मतलब देखिए महाप्रभु ने उनको कहा भागवत पढ़िए और नाम लीजिए, लेकिन वो वृंदावन में आके उससे ज्यादा सेवा किए, कम सेवा नहीं किए। रूप गोस्वामी ने उनको कहा कि आप राधा गोविंद देव का भी सेवा कीजिए, तो राधा गोविंद देव का सेवा करते थे आकर के। और कुक तो थे ही, भक्तों के लिए प्रसाद भी बनाते थे, है ना। और ग्रम्य वार्ता ना सुने ना कहे जीवाए, कृष्णा कथा पूजा पूजा आदिते अष्ट प्रहर याए। तो ग्राम्य कथा और ग्राम्य वार्ता, इधर उधर की फालतू की बात, फालतू की बात किसी से नहीं करते थे और ना ही सुनते थे, है ना, हमारा काफी समय इधर उधर की बात करने में निकल जाता है, ग्राम में कथा, ग्राम में वार्ता। तो कोई कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन को छोड़ के और इधर उधर की कुछ बात नहीं करते थे। तो वैष्णव निंदा कर्म नाही, वैष्णवेरा निंदा कर्म नाही पाड़े काने, सबे कृष्ण भजन करे यही मात्र जाने। और विशेष रूप से वैष्णवों की निंदा अपने कानों में पढ़ने ही नहीं देते थे। विशेष रूप से कोई कहे कि अरे ये भक्त मालूम है इसने क्या किया, क्या गड़बड़ किया, बोले नहीं मेरे को नहीं जानना है, मेरे को बिल्कुल मालूम नहीं करना है, मेरे को इतना ही मालूम है कि कृष्ण का नाम ले रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, इनके जो भी दोष कर्म है वो चले जाएंगे, मुझे इनकी निंदा नहीं सुननी है, बीच में रोक देते थे, है ना। तो क्या होता है, अगर हम किसी को कहें आपको मालूम है उसने क्या किया, क्या किया बताओ बताओ बताओ, है ना, हमारे को बहुत उल्लास आता है सुनने में, और फिर हम दो चार और उसमें जोड़ देंगे कि मैं भी आपको बता दूं उसने क्या किया। तो दूसरे का किसी का कुछ ने किसी कुछ गड़बड़ किया हो ना, तो उसको लोग बहुत, उसको बहुत सुनने में बहुत रुचि रखते हैं, किसी से कुछ गलती हो गई हो, है ना, जैसे कोई कोई बड़ा व्यक्ति कुछ कर दे, कोई बड़ा व्यक्ति कुछ कर दे तो आजकल तो उसको इंटरनेट पे लाखों लाखों लोग चर्चा करना शुरू कर देते हैं, है ना, उसको इंटरनेट पे डाल देते हैं और फिर सारा पूरा देश कई बार चर्चा करने लगता है कि इसने ऐसा कैसे किया, ऐसा कैसे किया। तो किसी से गलती हुआ, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है तो उसकी बड़ी धुलाई होती है ये देखा गया है, बड़ी निंदा होती है, बड़ी चर्चा होती है। तो लोगों को किसी का निंदा जो करने में बहुत रुचि है, बहुत रुचि आती है संसार में निंदा कर्म, लेकिन वो किसी की भी निंदा की बात अपने कान में पढ़ने ही देते थे, बीच में रोक देते थे, नहीं 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 मुझे नहीं सुनना है। तो ये देखो, ये सब हम सीखते हैं क्यों रूप को, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब वो भागवत पढ़ते थे तो उनको भगवान कृष्ण का प्रेम उनके हृदय में क्यों उल्लास आता था, क्यों उल्लास आता था, पहली बात वो इस संसार की फालतू की बात, इधर उधर की बात, गप्पे लगाते ना लोग, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, ग्राम्य कथा, ग्राम्य कथा में रुचि बिल्कुल नहीं, और वैष्णव का निंदा जो है बिल्कुल, कभी कहने के तो दूर की बात, सुनते ही नहीं थे बिल्कुल भी, कान में ही नहीं पढ़ने देते थे। और हमेशा वैष्णवों जहाँ पे उनको ये मिले, अवसर मिले सेवा का, वहाँ पे भक्तों का सेवा करते थे, और उसके अलावा जो भी टाइम मिले भागवत पढ़ते थे और नाम का जप करते थे। विशेष रूप से जब वो नाम का जप करते थे तो महाप्रभु के दिया हुआ जो अभूतपूर्व माला था और सुपारी था एक जगन्नाथ जी का महा, और कंठी माला तो पहने ही हुआ था, वो विशेष रूप से महाप्रभु का ध्यान करते थे कि महाप्रभु ने मुझे ये अभूतपूर्व गिफ्ट दिए हैं, ये मुझे उन्होंने पुरस्कार दिया था, तो उनका स्मरण करके और प्रेम में विवल हो जाते थे। तो देखिए हमें भी जब हम जप करते हैं ना, विशेष रूप से जिनकी दीक्षा हुई है, हमारी जप माला भी हमारे को हमारे गुरु महाराज ने जप करके दी है, उनका महाप्रसाद है। तो हम जब जप काला करने बैठे हैं तो याद करना चाहिए कि मेरे गुरु महाराज ने ये माला में जप किया है, ये उनका प्रसाद है। तो ये सोच करके हमें कृतज्ञता से अपने हृदय को भरना चाहिए और इस भाव में जप करना चाहिए। तो इस तरह से महाप्रभु के प्रति कृतज्ञता से उनका हृदय भर के वो स्मरण किया करते थे, भगवान का नाम जप किया करते थे। महाप्रभु रा कृपा ए कृष्णा प्रेम अनर्गल एते कहिलु ताते चैतन्य कृपा बल। तो कहते देखिए महाप्रभु की कृपा से भक्ति का जो भी अंग करते थे इतना उनको उस अंग में भगवान का सुख प्राप्त होता था, इतना उनके हृदय में उल्लास बढ़ता था, ये सब महाप्रभु की कृपा है। तो देखिए ये हमें इस वास्तव में कृपा का ही धन वास्तविक धन है। जैसे कि धनी व्यक्ति जो है वो हमेशा सोचता रहता है कि मैं कहाँ धन लगाऊं और धन को बढ़ाऊं, धन कहाँ लगा के धन को बढ़ाऊं, सोचता रहता है कि कैसे मैं धन को और धन एकत्रित करूं और धन एकत्रित करूं। भक्तों में लोभ होना चाहिए कृपाओं के एकत्रित करने का, कि मैं किस तरह से और कृपाओं के एकत्रित कर लूं, वैष्णवों की सेवा करूं, नाम जप करूं, कार्तिक महीने में भक्ति के अंग जो भी यहाँ पे रिकमेंडेड हैं, मतलब जो वहाँ आचार्य ने हमको बताए हैं, मैं और मेरे भक्ति को बढ़ाऊं। मैं कृपा के लिए, हमारे को कृपा के धन के लिए बहुत लोभ होना चाहिए हमारे जीवन में, ये हमको रघुनाथ भट्ट सिखाते हैं। तो वो इन्होंने इतनी कृपा प्राप्त की कि निरंतर अनर्गल मतलब निरंतर निरंतर उनके हृदय में प्रेम का सुख बढ़ता रहता था, ऐसा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे बताया गया है। यही यही सकल कथा सुने श्रद्धा करी, तारे कृष्ण प्रेम धन देन गौर हरी। तो ये जो धन मिला था रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को, जो ये कथा श्रद्धा भाव से सुनता है, उनको भी महाप्रभु ये धन अवश्य देंगे, ऐसा कविराज गोस्वामी आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे। अभी मैं आपको संक्षेप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बारे बताऊंगा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने पुस्तक लिखी है श्री चैतन्य चरितामृत, अत्यंत सुंदर पुस्तक लिखी है। तो एक बार भक्तिदान्त सरदेव ठाकुर प्रवचन कर रहे थे और जोर से बिजली कड़की और बारिश होने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी। हमने देखा ना, यहाँ पे भी होती ना वाड़ा में, बहुत बारिश होने लगी, पानी बढ़ने लगा। पानी बढ़ता है तो फिर हम देखते हैं, अरे कहाँ पानी पानी खड़ा होगा, वहाँ से सब सामान को हटाओ, है ना। पानी बढ़ने लगा तो भक्तिदान्त ठाकुर ने कहा एक दिन प्रलय आएगी और पूरा संसार डूब जाएगा। तो जब प्रलय पानी बढ़ने लगता है तो हम देखते हैं पहले क्या चीज़ को बचाया जाए, है ना, जो जो चीज़ को जो कुछ बहुमूल्य चीज़ है उसको बचाना चाहिए, पानी नहीं भर जाए। तो भक्तिदान्त ठाकुर ने कहा कि आप, प्रलय आएगी एक दिन, जल बढ़ेगा, आप भगवत गीता भागवत और चैतन्य चरितामृत को मत डूबने दीजिएगा, इसको बचा लीजिएगा। तो भक्तों ने सुना ये बात, फिर कहने लगे कि यदि आपसे उतना बोझ लेकर के तैरा ना जाए या नौका में बोझ बढ़ जाए, बहुत लोग आ जाएं और बोले कि भाई बोझ ज़्यादा बढ़ रहा है, सामान नीचे डालो, लोगों को बचाओ, सामान नहीं ज़्यादा चाहिए, कोई ऐसा नौका कम है लोग ज़्यादा हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि बोझ बढ़ जाए तो भगवत गीता को छोड़ देना, भागवत और शिष्य को रखना। फिर उन्होंने कहा और भी लोग बोले नहीं और बोझ कम करो, और बोझ कम करो, नौका डूब जाएगी, तो भागवत को भी छोड़ देना, लेकिन किसी भी हालत में चैतन्य चरितामृत को मत छोड़ना, उसको मत छोड़ना, क्योंकि यदि चैतन्य चरितामृत है तो हमारे जितना भी भक्ति का सिद्धांत है, जो भी वेद ग्रंथ पुराण आदि में सार है, वो सब चैतन्य चरितामृत में है। पूरा वैदिक ज्ञान जो है उसको दोबारा रिवाइव कर देंगे चैतन्य चरितामृत से। तो चैतन्य चरितामृत जो है वो मोस्ट कंप्लीट बुक सरस्वती ठाकुर ने बताया, उसको नहीं छोड़ना है। तो ये चैतन्य चरितामृत की महिमा है। और किन्होंने लिखी है वो? कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखी है। और उनके लिखने की वो कथा सुनाते हैं, स्वयं से कथा सुनाते हैं, तो मैं आपको संक्षेप में उनकी कथा सुनाता हूं। तो वो कहते हैं कि जो कृष्ण कथा भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास। जो वेद व्यास है वो कृष्ण लीला के व्यास है, कृष्ण लीला वेद व्यास ने कही है। और चैतन्य लीला के जो व्यास हैं, व्यास मतलब चैतन्य लीला के ऑथर, चैतन्य लीला जिन्होंने बताई है, उनके व्यास कौन है? वृंदावन दास ठाकुर हैं। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य लीला का वर्णन किया है और उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर वर्णन किया है। उन्हें कहा, कहते हैं वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, ऐसे ग्रंथ करी ते हो तारीला संसार। उन्होंने इतना सुंदर ग्रंथ किया है कि उन्होंने पूरे संसार को तार दिया है वृंदावन ठाकुर ने, ये चैतन्य महाप्रभु के लीला का वर्णन करके चैतन्य भागवत में। तो कोई कहे भाई उन्होंने आदि व्यास हैं, उन्होंने वर्णन किया है लीला का, तो फिर आपको और एक किताब लिखने की क्या आवश्यकता है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो वो बताते हैं कि क्या हुआ, वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की लीला तो अपार है, अनंत है, अपार है। जब वो लिख रहे थे तो उनके किताब का साइज बहुत बढ़ गया, तो उनको संकोच हुआ, अरे बाप रे इतनी बड़ी किताब, अभी लोग देखेंगे इतना मोटा किताब है, ग्रंथ है, तो उठाने को भयभीत हो जाएंगे, वो कौन पढ़ेगा इसको, इतने मोटे ग्रंथ को। तो थोड़ा संकोच आ गया उनके मन में कि बहुत मोटा किताब हो रहा है। तो उन्होंने थोड़ा सा महाप्रभु की कई लीलाओं को संक्षेप में वर्णन कर दिया। अच्छा दूसरा, फिर नित्यानंद प्रभु के ये वृंदावनदास ठाकुर जो है नित्यानंद प्रभु के शिष्य हैं। नित्यानंद प्रभु के जब महिमा का गान करने लगे, नित्यानंद लीला वर्णने हैला आवेश, चतनेरा शेष लीला रहीला अवशेष। नित्यानंद प्रभु का वर्णन करने लगे तो अध्याय के बाद अध्याय नित्यानंद प्रभु का वर्णन करने में लग गए, और क्या हो गया, फिर देखा अरे नित्यानंद प्रभु इतना वर्णन कर दिया और बुक भी मोटा हो गया, तो चैतन्य महाप्रभु का जो शेष लीला था, मतलब संन्यास के बाद का लीला, वो अवशेष रह गया। उन्होंने वो सूत्र रूप में लिख दिया, बहुत संक्षेप में लिख दिया। इसलिए फिर क्या हुआ, वो लीला पूरा रघुनाथ दास गोस्वामी ने देखा है, और रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन जब महाप्रभु के महाप्रभु जब अप्रकट हो गए और स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी उनके पास भगवतधाम चले गए, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अंतर्धान के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन आए। तो आज रघुनाथ गोस्वामी का तिरुभाव है, तो वृंदावन आए। वृंदावन में आके बताया गया है कि वो दिन रात जो है राधा कृष्ण का स्मरण करते थे, लेकिन एक प्रहर 3 घंटा प्रतिदिन महाप्रभु का चरित्र कथन करते थे राधा कुंड के तट पे। तो काफी समय तक, कुछ महीनों तक, रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रतिदिन 3 घंटे का क्लास लिया कि महाप्रभु का जो ये था शेष लीला संन्यास के बाद, संन्यास के बाद जगन्नाथपुरी चले गए थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में रहे और उन्होंने सब महाप्रभु की संन्यास के बाद की लीला देखी है। और वो लीला जो है वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन नहीं किया था, वो सूत्र रूप में किया था। तो वही लीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उनके मुख से सुनी, रघुनाथ दास गोस्वामी के मुख से सुनी पूरी लीला। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने गोविंद लीलामृत करके किताब लिख दिया था और उनको कविराज का जो है टाइटल मिल गया था। तो उन्होंने देखा कि ये जो है एक अच्छे ऑथर हैं और उन्होंने महाप्रभु की लीला भी सुनी है और इतने सीनियर वैष्णव भी हैं। तो सभी जो उस समय वृंदावन के वैष्णव थे, बताया गया है वहाँ पे हरिदास पंडित थे, अनंताचार्य थे, गोविंद गोसाई थे, काशीश्वर पंडित थे, यादवाचार्य आदि बहुत से वैष्णवों का नाम बताया गया है। ये सब वैष्णवों ने उनको निवेदन किया कि आप चैतन्य महाप्रभु का जो संन्यास के उपरांत शेष लीला है उसका वर्णन कीजिए। तो फिर क्या कहते हैं, सही सब लीला र सुनीते विवरण, वृंदावन वासी भक्तेरा उत्कंठित मन। सबका बहुत उत्कंठा हुआ, उत्कंठा मतलब बहुत उनका इच्छा हुआ। क्या इच्छा हुआ कि महाप्रभु का जो लीला है संन्यास के बाद का, हमको सुनना है, जानना है। तो उन सब ने मिलके मोरे आज्ञा करीला सब करुणा करिया, उन्होंने करुणा करके मुझे आज्ञा दी। तो देखिए, अगर आपको कोई सेवा की आज्ञा दे तो उसको करुणा समझ रहे हैं। देखिए तो बोलते हैं बहुत उन्होंने करुणा की कि मुझे सेवा की आज्ञा दी, मुझे सेवा का अवसर दिया। तो देखिए, सेवा का जो हमें ये हमें सेवा का जो मौका है उसको भी एक धन के समान मानना चाहिए। तो सभी वैष्णवों ने मुझे सेवा का ये एक अवसर प्राप्त किया, उन्होंने मुझ पर करुणा की और फिर मैंने उनकी आज्ञा को स्वीकार किया। कहते यद्यपि मैं इस लायक नहीं हूँ, यद्यपि कहते हैं मेरी इसमें मेरी कुछ क्षमता नहीं लिखने की, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं बहुत नीच हूँ, मैं बहुत पतित हूँ, लेकिन फिर भी वैष्णव आज्ञा बलि करी एते का साहस, मैं ये साहस कर रहा हूँ चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन करने का, क्योंकि मुझे वैष्णवों ने आज्ञा दी है तो मुझे वैष्णव की आज्ञा का पालन करना है। तो इस ये भाव से वो फिर बोलते कि मैं बहुत व्याकुल हो गया कि मैं कैसे वैष्णव की आज्ञा पालन कर पाऊंगा। तो वो मदन मोहन जी के सामने गए, वैष्णवेरा आज्ञा पाईला चिंतित अंतरे, मदन गोपाले गेला आज्ञा मागी बारे। तो मदन मोहन का एक दूसरा नाम मदन गोपाल भी है। तो मदन मोहन जी के पास चले गए और मदन मोहन जी को प्रार्थना की कि सभी वैष्णवों ने मुझे आज्ञा दी है कि महाप्रभु का जो संन्यास के उपरांत का लीला है उसका वर्णन कीजिए, लेकिन मैं जो हूँ बहुत पतित हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगा, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए। मदन मोहन जी से प्रार्थना की और मदन मोहन जी जैसे प्रार्थना की, मदन मोहन जी का जो हार था वो उनके गले से यहाँ से गांठ खुल गई और ऐसा नीचे खिसक के गिर गया। और जो पुजारी था ऐसा नहीं था कि वो पुजारी ने गांठ हल्की लगाई थी, वो पुजारी जो है निपुण पुजारी था, हाँ रोज, आज तक ऐसा नहीं हुआ था कैसे गांठ खुल गई हो बीच में। तो वो जब गांठ खुल के माला जो है सरक गई, पुजारी ने जान लिया कि ये मदन मोहन जी की इच्छा है, उन्होंने ये माला उनको दी है कृष्णदास कविराज गोस्वामी को, तो वो माला लेके आकर के उनके गले में डाल दिया और सभी भक्तों ने जोर से हरि बोल बोला, हरि बोल। आज्ञा माला पाइला मार हईला आनंद। कविराज गोस्वामी कहते हैं ये मुझे आज्ञा माला मिल गई, सेवा की आज्ञा दे दी। मदन मोहन जी ने कहा गो हेड कि आप आगे बढ़िए, ये सेवा में आप सफल होंगे। तो आज्ञा माला पाइला अमार हईला आनंद तहा करिनु ऐ ग्रंथेरा आरंभ। तो अभी मदन मोहन की जब कृपा हो गई तो मैं ये ग्रंथ का आरंभ कर दिया। तो देखिए हम जो यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी कार्य करें मदन मोहन जी जाए प्रार्थना करनी चाहिए पहले, कि मेरा बच्चे लोग एग्जाम आ रहा है, मैं आपसे तैयारी शुरू कर रहा हूँ, मेरा दसवीं का एग्जाम आ रहा है, दसवीं कक्षा शुरू हो रही है, मैं आज एग्जाम देने जा रहा हूँ, मैं ये तैयारी करने जा रहा हूँ, ये कार्य करने जा रहा हूँ, सब जाके हमें मदन मोहन से निवेदन करनी चाहिए और उनकी आज्ञा मांगनी चाहिए। अभी ये मत सोचिए कि उनका माला खिसक जाएगा, लेकिन उनकी आज्ञा मिल जाएगी आपको, भगवान आपको उनकी दृष्टि से कृपा देंगे, आज्ञा देंगे और आपको सफलता मिलेगी। तो यहाँ हमको कृष्णदास कविराज गोस्वामी से सीखना है कि हम जो भी कार्य करें और हम चिंता तो हमारे हृदय में चिंता हो रही कैसे कार्य पूरा होगा, तो मदन मोहन के पास पहुंच जाना है, ठीक है, और फिर उनकी कृपा से सब कार्य सार्थक हो जाएगा। ये हमको कृष्णदास कविराज गोस्वामी सिखाते हैं। तो देखिए आज जो है शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, शुक्ल पक्ष की द्वादशी है, अश्विन का महीना है, कार्तिक महीना शुरू होने जा रहा है। आज के दिन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने शरीर छोड़ा, उसके 3 साल के बाद मतलब 1579 में उन्होंने शरीर छोड़ा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने, फिर 1582 में 3 साल के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने उसी दिन सेम महीना सेम तिथि 3 साल के बाद शरीर छोड़ा, फिर उसके 25-30 साल के बाद 17वीं सदी में 1617 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वही तिथि पर शरीर छोड़ा। तो इन तीनों आचार्यों ने एक ही तिथि पर शरीर छोड़ा है, तो इन तीनों की समाधि राधा कुंड श्याम कुंड के परिक्रमा में एक जगह पे आता है, तीन गोस्वामी समाधि, तो तीनों गोस्वामी का समाधि एक साथ बनाया गया है। उनका अलग समाधि भी है अपना, रघुनाथ का गोस्वामी का अलग समाधि है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का भी वृंदावन में समाधि है राधा गोविंद देव के मंदिर के सामने, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी का समाधि भी है राधा दामोदर मंदिर में, लेकिन इन तीनों का एक साथ समाधि भी बनाया गया है क्योंकि तीनों एक ही तिथि पर शरीर भी छोड़े हैं, तो उधर भी इनका तीनों का एक साथ भी समाधि है। तो इस तरह से ये तीन गोस्वामी आज के दिन जो है उनका तिरुभाव हुआ है। तो हम सोच सकते हैं कि देखिए कार्तिक का महीना जो है राधा रानी का महीना है, इन तीनों को राधा रानी ने अपने धाम में सेवा के लिए बुला लिया कि कार्तिक आ रहे हैं चलो आ जाओ, हाँ तो 3 दिन अभी 3 दिन में कार्तिक शुरू हो जाएगा ना, तो तीनों को द्वादशी के दिन कि अभी 3 दिन नोटिस है, 3 दिन पहले अभी 3 ही दिन रह गए हैं चलो आ जाओ सेवा के लिए, उन तीनों को राधा रानी ने एक ही तिथि में अपने धाम में गोलोक वृंदावन में बुला लिया। ये तीनों गोस्वामी का तीन गोस्वामी समाधि भी है। जय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। अभी 5 मिनट जो मैंने बोला है, मैंने क्या कहा था, कितना ध्यान पूर्वक आप सुने हैं उसका मैं हाँ एक थोड़ा आपसे शॉर्ट क्विज लूंगा, और विशेष रूप से हम आपके लिए प्राइज भी रखेंगे, ठीक है। चलिए अभी शुरू होगा आपका एक क्विज, हाथ खड़ा कीजिएगा जो मैं सवाल पूछूंगा, ठीक। अच्छा अभी ये बताइए कि वाराणसी में महाप्रभु के जो भक्त थे उनका नाम कौन बताएगा, आपको 3 नाम बताना पड़ेगा। हाँ अभी हाथ खड़ा करना है तो देखो, अगर एक नाम आपको आता है और हाथ खड़ा नहीं करने का, आधे आधा उत्तर देने का नहीं, जिसको पूरा उत्तर मालूम है वो देने का पूरा उत्तर, आधा उत्तर के लिए हाथ मत खड़ा करना, तो पूरा उत्तर जिसको मालूम है वो हाथ खड़ा करेंगे। वाराणसी में महाप्रभु के 3 कौन भक्त थे, हाँ उनको दीजिए माइक दीजिए।
तपन मिश्रा, चंद्रशेखर वैद्य, सनातन गोस्वामी.
गलत कर दिया, एक मिनट, थोड़ा गलत कर दिया. ये इन तीनों ये तीन सनातन गोस्वामी तो आए थे उस समय सुनने के लिए आए थे, पर आपने चंद्रशेखर का नाम भी थोड़ा सा गलत बोल दिया. चंद्रशेखर क्या बोला आपने, क्या बोला? चंद्रशेखर वैद्य बोला. चंद्रशेखर वैद्य, तपन मिश्रा, और इनके तपन मिश्रा के लड़के कौन थे?
रघुनाथ भट्ट गोस्वामी.
इनके लिए हरि बोल बोलिए, हरि बोल. तो वास्तव में दो भक्त और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, उनके पुत्र को तीसरा माना जाता है, तीन भक्त, पर मैंने दो का नाम भी बताया बीच में, उनके पुत्र हो गए. तो ये तीन भक्त महाप्रभु के बताए गए हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, उनका पिताजी तपन मिश्रा, और चंद्रशेखर वैद्या. उनका नाम लिखिए. तो बहुत सुंदर. तो ये तीन महाप्रभु भक्त हैं वाराणसी में. अच्छा, अभी वाराणसी में महाप्रभु कितने दिन रहे, कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए, पूरा उत्तर देना है. वाराणसी में महाप्रभु कितने दिन रहे? ओके, हाँ इधर दीजिए, इनको बताइए, जाते समय और आते समय, दोनों समय का बताइए. अरे भाई, आपस में चर्चा नहीं करना अभी.
हाँ
हाँ, कितने जाते समय कितने दिन रहे, आते समय कितने दिन रहे? अरे क्या हो गया? हाथ आपने सबसे ऊपर खड़ा किया, अभी माइक्रोफोन आया तो. अच्छा ठीक है, इधर पास कीजिए, कोई बात नहीं. हाँ नहीं, जिसने उत्तर नहीं दिया, पीछे हाथ खड़ा किया था किसने? हाँ दीजिए दीजिए, बताइए. अरे आपस में चर्चा नहीं करना है, हरी बोल. ये अभी चर्चा शुरू हो गया इनका. हाँ हाँ, एक मिनट, बताइए बताइए, बोलिए.
16 महीना.
ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं. और किसको मालूम है इधर से? हाँ चलो, इनको आगे माइक दीजिए, लास्ट ट्राई. अभी गुरुकुल, फिर पास कर देंगे माइक हम लोग. अभी गुरुकुल का लास्ट ट्राई है. हाँ,
जाते समय 10 दिन.
हाँ,
और आते समय 2 महीने.
हरि बोल. तो जाते समय 10 दिन, आते समय 2 महीना. इनका नाम लिखिए प्राइस के लिए. अभी अगली बार क्लास लेंगे तो आधे लोग मैं देख रहा था सो रहे थे, है ना? अभी सबका नींद खुल रहा है धीरे धीरे. हाँ, अभी अगला सवाल. तो हाँ, महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को क्या क्या उपहार दिए? महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को क्या क्या उपहार दिए आपको? उनको तीन उपहार दिए महाप्रभु ने. तीन उपहार आपको आपको वर्णन, जिसको तीन उपहार का नाम मालूम है वही बताएंगे. पीछे पास कीजिए माइक, पीछे पास कीजिए माता जी इसकी तरफ जाओ. कोई गुरुकुल के बच्चा को देगा, दीजिए. प्रीति, प्रीति, हाँ प्रीति को दीजिए, बताइए कौन से तीन उपहार हैं?
महाप्रभु ने अपनी माला उनके गले में डाल.
कौन सी माला?
कंठी माला.
महाप्रभु ने अपनी कंठी माला उपहार दिया. फिर
जगन्नाथ जी की तुलसी माला उनको उपहार में दिया.
जगन्नाथ जी की तुलसी माला दिया.
और उनकी भोग लगी हुई सुपारी.
दी. हरि बोल. ये तीन उपहार चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को दिए. अच्छा, अभी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को महाप्रभु ने आपको तीन कार्य करने हैं, महाप्रभु ने उनको बोला. नहीं, हाँ चार कार्य करने को बोला महाप्रभु ने, और एक कार्य बोला मत कीजिए. महाप्रभु ने उनको गिफ्ट तो दिया और उनको आदेश भी दिया. उधर ही रहने दीजिए माता जी, इसकी तरफ से अभी जो इच्छा होगी. तो भी महाप्रभु ने उनको कहा आप चार कार्य कीजिए. चलो चार में से तीन तो बताइए कम से कम. अभी देखते हैं कितने, तीन या चार. तो महाप्रभु उनको कुछ कार्य करने को कहा और कुछ कार्य कहा ना कीजिए. ये कौन बताएगा? जो कम से कम तीन कार्य तो आपको बताने हैं, कीजिए और एक कार्य नहीं कीजिए. पीछे, हाँ केशव प्रिया माता जी हाथ खड़ा कर रही हैं. तीन कार्य कीजिए और एक कार्य मत कीजिए, कम से कम बताइए.
शादी मत करो करके बोले. हाँ?
शादी नहीं करना. अच्छा केशव चंद्र प्रभु, आपको बरोबर आपको वो ध्यान है. ऐ तो नहीं करना है. अभी क्या करना है, वो क्या है, वो भी दीजिए दीजिए माता जी को दीजिए, पूरा करेंगे. जो कार्य करने को कहा, हरे कृष्णा, नहीं केशवप्रिया माता जी को दीजिए, एक बार दीजिए, बोलिए क्या कार्य करने को कहा, याद है? सोच के बताइए क्या कार्य करने को कहा महाप्रभु ने?
भागवत पढ़ना।
हाँ, भागवत भागवत पढ़ना है और
प्रचार करना
है।
प्रचार करने के
लिए प्रचार, हाँ प्रचार एग्जैक्टली नहीं बोला, भागवत बोला और क्या करने को बोला? ओके ठीक है, और नहीं ठीक है, जिनको मालूम है वो बताएंगे दोबारा से। और किसी ने हाथ खड़ा किया पीछे? बताइए बताइए।
भागवत पढ़ना,
भागवत पढ़ना,
कृष्ण का नाम लेना,
कृष्ण का नाम लेना,
और भक्तों की सेवा।
हाँ,
भक्तों की सेवा करना।
भक्तों की सेवा, भक्तों में किन की सेवा करने को बोला था विशेष रूप से?
माँ बाप की।
हाँ, माता पिता की सेवा कीजिए। हरि बोल बोलिए। तो माता जी का नाम लिखे रखिए, उन्होंने सही जवाब दिया। तो महाप्रभु ने उनके कहा कि आप भागवत का अध्ययन भी कीजिए वैष्णव के पास, माता पिता की सेवा कीजिए, है ना, वैष्णव का। उन्होंने बोला भागवत अध्ययन कीजिए, पहली बार बोला, और बाद में बोला भागवत पढ़ते रहिए। पहले बोला भागवत अध्ययन कीजिए वैष्णव के पास, माता पिता की सेवा कीजिए, फिर भागवत का पठन कीजिए, फिर भगवान का नाम लीजिए, और ये भी बोला था कि एक बार दोबारा भी आइएगा। हाँ, तो देखिए पांच आदेश दिए, दोबारा भी एक बार जगन्नाथपुरी आइएगा। तो इस तरह से महाप्रभु ने ये कार्य करने को कहे और एक कार्य निषेध किया महाप्रभु ने। ठीक है, तो अभी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के जो गुण है, जो हमने गुणों का चर्चा किया, उनके चार गुणों का वर्णन कौन करेगा? चार गुणों का आपको वर्णन करना है। हमने अभी कई उनके कई गुणों का चर्चा किया, उनके क्या गुण थे। रघुनाथ दास गोस्वामी के चार गुण कौन बताएंगे हमको? कौन बताएंगे? यहाँ पे एक हाथ खड़ा करा है, इस साइड में कोई उत्तर देना चाहते हैं? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के चार गुण, पीछे माता जी इसमें से कोई, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के चार गुण बताइए। यहाँ प्रेमांजनपुर का हाथ खड़ा है, किसी ने यहाँ पे छात्र ने नहीं उत्तर दिया हो तो उनको देंगे अभी चांस। हाँ, उनको दीजिए, चार गुण बताने आपको हैं। दीजिए माइक दीजिए। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के चार गुण बता दीजिए।
भक्तांची निंदा ना ऐकणे,
भक्त, हाँ भक्त निंदा नहीं, और
अनर्थ बात न बोलने,
हाँ ये ग्राम्य कथा, अन्यथा कुछ बात नहीं करना, हाँ
कुकिंग, हाँ कुकिंग,
हाँ बहुत सुंदर कुकिंग करते थे, और एक
प्रचार,
प्रचार
भागवत पठन,
भागवत का प्रचार, हरि बोल बोलिए, और बहुत सुंदर रूप से भागवत गाते थे, भागवत गाते थे, कुकिंग करते थे, गोविंद देव की सेवा भी करते थे, गोविंद देव की सेवा करते थे। तो वास्तव में आप देखेंगे जो पंचांग भक्ति है, धाम में तो वास किए ही, भगवान का सेवा किए, भक्तों का सेवा किए, नाम उच्चारण किया करते थे, कुकिंग करके वैष्णव का सेवा करते थे, भागवत पढ़ते थे, तो कितने गुण हैं उनमें। वैष्णव का निंदा नहीं सुनते थे बिल्कुल भी, ग्राम्य कथा ना तो बोलते थे ना तो सुनते थे, है ना, कई कई गुणों का उल्लेख है। ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में वर्णन आता है। हरे कृष्णा। तो देखिए, हमको प्रभुपाद ने रात भर जाग जाग करके हमको ये भागवत दिया है, तो आज हमें प्रार्थना करना है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से कि हमारे जीवन में एक भी दिन ऐसा नहीं जाए कि जिस दिन हम प्रभुपाद की इस भागवत का या तो श्रवण न करें या तो पठन न करें। मतलब प्रतिदिन हमें चाहिए कि हम कुछ तो भगवान का कथा सुने। देखो भागवत कथा, भगवद गीता, भागवत चैतन्यचरितामृत, जैसे भागवत कथा ही है, भगवान की कथा है। तो हमें आज के दिन ये ऐसा प्रार्थना करनी चाहिए कि एक भी दिन ऐसा नहीं जाए कि हम उस दिन भगवान की कथा या ना सुने या ना पढ़े। थोड़ा समय निकाल के या तो पढ़ें या तो कथा कुछ सुने प्रतिदिन। मैं एक व्यक्ति से मिला, ये आज से 15 साल पहले की बात है, तभी मैं जॉब करता, 15 साल नहीं, ज़्यादा समय हो गया, मैंने जॉब करता 2003 में, 19 साल हो गए। तो ये 2003 की बात बता रहा हूँ, 19 साल पहले मैं एक व्यक्ति से मिला था, वो मेरे को कहने लगा कि हम लोग भागवत मॉर्निंग में भागवत पढ़ते थे मिलके, जब मैं 2003 की बात कर रहा हूँ, तो ऑफिस जाने से पहले भागवत पढ़ते थे। तो हम एक दिन भागवत पढ़ने को बैठे तो ये व्यक्ति आ गया, बोले क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? हमने बोला भागवत पढ़ रहे हैं। तो बोले अच्छा, बोले मैं भी इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ता हूँ रोज, इकोनॉमिक्स टाइम्स एक अखबार का नाम है, बिजनेस न्यूज़पेपर है। तो बोला मैं पिछले 25 साल से एक भी दिन मिस नहीं किया इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ना। मैंने अरे 25 साल से, मैंने बोला, तो मैं सोचने लगा कि कोई ऐसा भक्त है जिसने पिछले, कोई कह दे कि मैंने पिछले 25 दिन एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मैंने प्रभुपाद की किताब ना पढ़ी हो। तो मैंने बोला बड़ा मुश्किल होगा ऐसा ढूंढना, को कह दे हमें 25 दिन से एक भी दिन मैंने किताब नहीं पढ़ी प्रभुपाद की, मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं किया कि मैंने किताब ना पढ़ी हो, और आप बोले 25 साल मैंने एक भी दिन न्यूज़पेपर इकोनॉमिक्स टाइम्स नहीं पढ़ा। मैंने बोला ऐसी दृढ़ता हमारे में कब आएगी, ऐसा संकल्प हमारे में कब आएगा? तो मैं ऐसा सोचने लगा। तो ऐसे लोग हैं देखिए संसार में। तो आज हमें रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से हमें प्रार्थना करनी है कि ऐसा एक भी दिन नहीं जाए कि जहां हम भगवान का नाम ना लें, भगवान की कथा या तो कुछ पढ़ें या तो सुने, एक भी दिन ना जाए जिस दिन हम ये कार्य ना करें, और ऐसा एक भी दिन ना जाए जब हम वैष्णवों को प्रसन्न ना करें। तो ये हमें रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, उनके जीवन से प्रेरणा लेके इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए जो हमारे हृदय की प्रार्थना है वो भगवान की कृपा से वो सत्य हो जाएगी। ऐसे आशीर्वाद है आज के दिन में, बहुत विशेष आशीर्वाद है। आप हृदय से जो प्रार्थना करेंगे वो उनके आशीर्वाद से आपका संकल्प जो है सत्य हो जाएगा। तो आज विशेष रूप से अपने हृदय से प्रार्थना कीजिए और उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। और प्राइस के रूप में विशेष महाप्रसाद राजहंस प्रभु आपको देंगे, जिन्होंने सही से उत्तर दिया, उनके पास सबका नाम है। तो आरती के बाद आपको रेगुलर द्रोण प्रसाद मिलेगा, और उसमें से विशेष महाप्रसाद, वो जो जो सबसे उत्कृष्ट वैरायटी का है, वो देख करके वो उनके पास रखेंगे, और जिन्होंने सही उत्तर दिया है उनको वो विशेष महाप्रसाद भी, हाँ नाम सब लिखा है, राजहंस प्रभु वो बांटेंगे। जय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। हाँ जय नील प्रेम।
हरे कृष्ण। तो हम दामोदर प्रभु को 3 बार हरि बोल बोल के धन्यवाद देंगे इतना सुंदर कथा के लिए। हरि बोल हरि बोल हरि।
जय अनिल प्रेमादन करुणा प्रचुर, हेनु प्रभु को तागेला आचार्य ठाकुर, कहमुरा स्वरूप रूपा कह सनातन, कह दास रघुनाथ पतित पावन, हमरा बट्टा जुगा काह कवीरा एक काल कोता गेला गौर नटरा पाशने कुटीबो माता अनले पशिबो गौरांग गुनेरा निधि कोता गेले पबो सब संगीरा संगे जे कोयलो विला से संघन पाया कांदे नारोतम दा से संगना पाया कांदे नारोतम दा जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद की श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की